ये बोलकर ध्रुव जल्दी से वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी आहान तुरंत ध्रुव को देखकर बोला था, ये सब क्या है यार, तुम लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक हो गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनका पुराना सनकीपन, इनका पुराना ऑब्सेशन वापस लौट आया है। देखा नहीं तुमने, आज अविनाश भैया ने भाभी की फिक्र की तो ये बात भी इन्हें ऐसी लग रही है मानो ये भी इन्हें जलन महसूस करा रही हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आहान की बातें सुनकर एक पल के लिए ध्रुव, आकाश और सुमित उस बात पर विचार करने लगे थे, लेकिन फिर तीनों ने ही उस बात को नकारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अरमान आस्था को लेकर तो शुरू से ही प्रोटेक्टिव था, और ये बात उसका सनकीपन नहीं है, उसका पुराना ऑब्सेशन तो अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ आस्था से प्यार करता है। हमें नहीं लगता कि उसके दिल में अब भी आस्था कोई जुनून बनकर रह गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि आस्था ने उस जुनून को अपनी मोहब्बत से खत्म कर दिया है, अपने प्यार से, और अब वो सिर्फ और सिर्फ आस्था को प्यार करता है। ये सुनकर कहीं ना कहीं आहान बोला था, आई होप भाई ऐसा ही हो। ये बोलकर फिलहाल वे लोग भी जल्दी ही जाकर अपने अपने पार्टनर के पास इस तरह से लेट गए थे कि उन्हें ये एहसास भी नहीं हुआ कि उनके पति कई घंटों तक के लिए गायब थे। फिलहाल वहीं आस्था एक बड़ी ही प्यारी और मीठी नींद सो रही थी। आखिरकार उसका प्यारा पति उसे वापस मिल चुका था, उसे किसी भी तरह का कोई खौफ या डर नहीं था। अरमान सीधा अपने कमरे में आया और उसने आस्था को प्यार से सोते हुए देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा उठा। वो उसके ठीक बराबर में बैठ गया था। इस वक्त अंश बेहद गहरी नींद में था, जो कि पास ही बेड के बगल में लगे लग्जरी झूले में आराम से सोया हुआ था। अरमान बारी बारी से कभी अंश को देखता था तो कभी आस्था को देखता था, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे के भाव डार्क होते चले गए। जिस तरीके से अविनाश ने आज बातें की थीं, वो सारी बातें अरमान के दिलो दिमाग में चलने लगी थीं। उसके दिल और दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने खुद को थोड़ा सा कंसोल किया और उधर टहलते हुए सोचने लगा था, क्या वाकई मेरे पागलपन की वजह से मेरी आफत को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहकर भी किसी भी तरह से जाने अनजाने में भी अपनी आफत को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बारे में सोच तक नहीं सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गुरुजी, आपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि मेरी वो खूबसूरत यादें, जिनकी यादों से मैंने जीना सीखा था, वही यादें आपने मुझसे छीन ली। आपने बहुत बड़ी गलती की है गुरुजी, और इस बात का जवाब आपको बहुत जल्द देना पड़ेगा। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। फिलहाल उसने जल्दी से अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपनी यादों पर जोर डालने की कोशिश करने लगा था कि आखिरकार यादें जाने के बाद उसने असल में कब कब आस्था को तकलीफ पहुंचाई है। उसे बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि आस्था को वो सपने में भी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन जाने अनजाने में यादों के जाने के बाद उसने उसे तकलीफ पहुंचाई है, ये बात अंदर ही अंदर से अरमान को पूरी तरह से परेशान करने लगी थी। अरमान को शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि वो आस्था के पास जाए, उसे उठाए और उससे माफ़ी मांगे। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, वो उससे कहना चाहता था कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके हाथ में नहीं था। वो उसे यह एहसास कराना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बार बार कभी अंश को देखता तो कभी आस्था को देखता, लेकिन आज आस्था को इतनी प्यारी और मीठी नींद में सोते हुए देखकर वो उसे जगाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था कि न जाने अरमान कितने लोगों का खून पीकर बैठा हो। वो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। फिलहाल दूसरी ओर नानी माँ की नींद खुल गई और वो प्रियंका के चेहरे की ओर देखती रही थी, मानो वो उसके चेहरे में अपनी पुरानी पोती प्रियंका को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। प्रियंका का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। नानी माँ ने शुरू से ही आस्था को बेहद मोहब्बत दी थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और प्रियंका हमेशा शिकायत किया करती थी कि आप अपनी नातिन को अपनी पोती से ज़्यादा प्यार करती हैं, जबकि आपको मुझसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका का मन शुरू से ही थोड़ा ज़िद्दी और भटका हुआ था, इसीलिए नानी माँ हमेशा उसे अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती थी और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए समझाती रहती थी। अब प्रियंका, जो कि काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी और अपने पति के साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रही थी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। ये सोचकर नानी माँ को बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था। फिलहाल नानी माँ ने प्रियंका का हाथ थाम लिया और उससे बातें करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रियंका पूरी तरह से बेहोश थी, क्योंकि उसे अगली सुबह तक होश नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी नानी माँ अपने दिल की सारी बातें उससे कहने लगी थी कि अब वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और अपनी बाकी की ज़िंदगी प्रियंका के साथ ही गुजारेंगी। पता नहीं प्रियंका अपनी पुरानी शक्ल सूरत में वापस आ पाएगी या नहीं, लेकिन जिस लड़की की शक्ल सूरत यानी नैना की शक्ल प्रियंका को मिली थी वो बेहद सुंदर थी। राजवीर की बीवी बेहद खूबसूरत थी। राजवीर ने उसे पूरी तरह से अपनी कायनात बनाकर रखा हुआ था, लेकिन अब प्रियंका के इस तरह बदल जाने पर कहीं ना कहीं नानी माँ को बहुत ज्यादा दुख भी महसूस हो रहा था। वो खुद को तैयार कर रही थी कि अगली सुबह अपने बेटे बहू को प्रियंका की हालत के बारे में कैसे बताएं। फिलहाल दूसरी ओर इन सभी बेचैन रातों के बीच अगली सुबह हो चुकी थी। आस्था की आंखें जल्दी ही खुल गईं। जैसे ही उसकी आंख खुली वो अचानक हैरानी से भर उठी, क्योंकि उसके ठीक बराबर में अरमान बैठा हुआ था और उसे लगातार देखे जा रहा था। जैसे ही आस्था ने अरमान को यूं देखा उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान इस तरह बैठकर उसे देख रहा होगा। वो घबराकर तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अरमान पूरी रात नहीं सोया था। पूरी रात उसने आस्था को देखते हुए ही गुजार दी थी। अब आस्था ने जल्दी से अरमान की तरफ देखा और बोली, मिस्टर सिंघानिया सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या आप पूरी रात सोए नहीं? बोलिए ना, क्या हुआ? ये कहते हुए आस्था ने अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से अरमान के चेहरे को छूना शुरू कर दिया। आस्था जो अभी उठकर बैठी ही थी, तभी अचानक अरमान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी ओर देखते हुए बोला था, आफत मैं तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं सो गया तो कहीं तुम उठ ना जाओ और जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें बोल ही ना पाऊँ। तुम सोच भी नहीं सकती तब मुझे कैसा लग रहा है। जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था पूरी तरह से बिजली की तेजी से उठ खड़ी हुई और अरमान को देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर बोली थी, आप हमें डरा रहे हैं। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हमने आपको बहुत मुश्किल से पाया है। हम आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। प्लीज बताइए ना क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए हम इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। प्लीज बताइए ना क्या हुआ है आपको। तब अरमान ने गहरी सांस ली, आस्था के हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरकर बोला था, बच्चे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आफत तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ निभाया है। इतना ही नहीं मेरी यादें जाने के बाद भी तुमने मेरा पागलपन झेला है। बस यही बात मुझे अंदर अंदर से खाई जा रही है। मुझे ये पता चला है कि मेरी यादें जाने के बाद तुम्हारी आंखों में कितने आंसू आए, कितने दर्द तुम्हारी जिंदगी में आ गए।
लेकिन मैं वादा करता हूँ आफत, जिसने भी हमारी जिंदगी में दर्द भरे हैं मैं उसे मौत से भी ज्यादा भयानक सजा दूंगा। इतनी भयानक सजा दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। जैसे ही अरमान ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो आस्था से सॉरी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने तो कभी सॉरी बोलना सीखा ही नहीं था। आस्था के प्यार में वो काफी हद तक बदल चुका था, लेकिन अभी भी सॉरी जैसे शब्द ऐसे थे जो वो जल्दी से अपनी जबान पर ला ही नहीं पाता था। तभी अचानक आस्था हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरमान को देखते हुए बोली थी, तो आप हमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द ग्रेट डेविल किंग अरमान सिंघानिया हमसे माफी नहीं मांग सकते, है ना? इतनी आसानी से कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप? ये सुनकर अरमान भी मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसने तुरंत अपना माथा आस्था के माथे से जोड़ लिया था और उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोला था, तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो अरमान सिंघानिया को समझने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बहुत अच्छे से समझती हो मुझे आफत। भले ही मेरी जबान से माफी जैसे शब्द नहीं निकलते, लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं पूरी तरह से झुकने को तैयार हूँ। ये बोलकर अरमान धीरे धीरे आस्था के एकदम पास घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुकाकर इसके सामने बैठ गया था। ये देखकर तो आस्था का दिल पूरी तरह से उछलने लगा था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सिंघानिया जैसा इंसान जो हमेशा सबके सामने सिर ऊंचा करके चलता है इतना ज्यादा प्यार में डूबा और इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा कि वो उसके सामने सिर झुकाकर बैठ जाएगा। ये सारा दृश्य आस्था के दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल पैदा कर गया था। उसने तुरंत ही खुद भी घुटनों के बल बैठकर अरमान के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया था। अरमान ने अपनी आंखें बंद की तब आस्था ने बड़े ही प्यार से अरमान को देखकर बोला, आप ठीक तो है ना मिस्टर सिंघानिया? अब अरमान ने खुद को शांत किया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, मैं ठीक हूं आफत, तुम परेशान मत हो। ये सुनकर कहीं ना कहीं आस्था ने राहत की सांस ली थी। फिलहाल आस्था तुरंत उठी और फिर अरमान का हाथ थामकर बोली थी, आप नहीं जानते, आपकी यादें लौट आना और सबके सामने इस बात को कबूल कर लेना ऐसा लग रहा है मानो कोई सपना हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इस तरह देखकर हमें कैसा महसूस हो रहा है। ये कहते हुए आस्था एक बार फिर अरमान के गले लग गई थी और अरमान ने भी आस्था को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। वो आस्था को इस तरह छू रहा था मानो आस्था सिर्फ और सिर्फ उसी की हो, ये सोचते हुए वो उसे और करीब कर रहा था। फिर कुछ देर बाद आस्था जल्दी से उठी और बोली, हमें फटाफट प्रियंका दीदी का हालचाल पता करना चाहिए, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, तब तक आप प्लीज अंश को उठा लीजिए। ये कहकर आस्था सीधे वॉशरूम में चली गई। वहीं अरमान आस्था को जाते हुए देखता रहा। कुछ देर तक वो वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता रहा और फिर धीरे से अंश के पास गया। वो उसे देखते हुए बोला था, उठ जाओ अंश सिंघानिया, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। जैसे ही अरमान ने अपने रहस्यमयी और शेर जैसे अंदाज में ये कहा, अंश ने तुरंत अपनी आंखें खोलनी थी। ऐसा लग रहा था मानो अंश अपने पापा का बेहद समझदार बेटा हो जो उनकी हर बात मानता हो। उठते ही वो खिलखिलाकर मुस्कुराया और सीधे अरमान की गोद में चढ़ गया। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो अरमान के चेहरे को छूने लगा था। अंश को देखकर अरमान के चेहरे पर एक गहरी और सच्ची मुस्कान आ गई थी। उसने अंश को गोद में लेकर धीरे से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इधर उधर हो जाऊं तो उस वक्त अपनी मम्मा के साथ रहना, और याद रखना तेरी मम्मा पर किसी की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। तेरी मम्मा सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की है, सिर्फ हम दोनों की, उसके अलावा किसी और की नहीं, समझा? अरमान के इस खड़ाक अंदाज में कही गई बातें सुनकर मासूम अंश बस अपने पिता को देखता रह गया था। उसे क्या पता था कि उसके पिता उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहना चाहता हो, पापा मुझे पहले बड़ा तो होने दो, अभी तो मैं खुद ही नन्हा सा हूं, और आप इस छोटे से बच्चे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हो। फिलहाल अंश तो फिर से उनींदा सा होकर अपने पिता की गोद में ही टिक गया था। उधर आस्था जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गई थी। जैसे ही अरमान ने उसे गीले बालों के साथ देखा, वो कुछ पल के लिए खुद को रोक नहीं पाया। कुछ सोचकर उसने आस्था से कुछ नहीं कहा। आस्था ने अंश को गोद में लिया और बोली, हम नीचे जा रहे हैं फटाफट प्रियंका दीदी को देखने, आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए मिस्टर सिंघानिया, और आज मैं आपकी पसंद का सारा फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी। कितने दिनों बाद मेरे पति मेरे हाथों का नाश्ता करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस वक्त कैसा लग रहा है। ये कहते हुए आस्था के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अरमान मुस्कुराकर आस्था को देख रहा था, लेकिन जैसे ही आस्था अंश को लेकर कमरे से बाहर निकली, अरमान का चेहरा अचानक रहस्यमयी और खतरनाक हो गया था। अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाता।